नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वन और वन्य जीव विभाग में वन्य जीव निरीक्षक के 9 पदों को मंजूरी दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने टोडापुर स्थित पुलिस मुख्यालय में दिल्ली यातायात पुलिस के नए आपदा प्रबंधन वाहनों और महिला नेतृत्व वाली स्कूटर के बेड़ों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने भी बाढ़ नियंत्रण आपातकाल वाहनों के बेड़े को रवाना किया। दिल्ली पुलिस ने डाबरी क्षेत्र से अवैध LPG सिलेंडर भंडारण और रीफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इंडिया पोस्ट देश में एक प्रमुख लॉजिस्टिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर। और हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार दिल्ली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वन और वन्य जीव विभाग में वन्य जीव निरीक्षक के 9 पदों को मंजूरी दी है। ये पहल शहरी पर्यावरण चुनौतियों के बीच वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार पर्यावरणीय संरक्षण को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग अलग फील्ड डिवीजन में वन्य जीव निरीक्षक की तैनाती एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिरसा ने कहा कि इससे सभी टीमें वन्य जीव की सुरक्षा कर सकेंगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज टोडापुर स्थित पुलिस मुख्यालय में दिल्ली यातायात पुलिस के नए आपदा प्रबंधन वाहनों और महिला नेतृत्व वाली स्कूटर टीमों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इन सुविधाओं से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा और आपात स्थितियों में त्वरित तथा अधिक प्रभावी कार्रवाई संभव हो पाएगी। इस अवसर पर सभी यातायात प्रहरियों, प्रतिबद्ध नागरिक स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज दिल्ली नगर निगम द्वारा खरीदे गए वाहनों के बेड़े को झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री सिंह ने बताया कि सरकार दिल्ली को स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मानसूनी वर्षा, अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था और तीव्र शहरीकरण के कारण दिल्ली में शहरी बाढ़ की समस्या लगातार बढ़ रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए MCD ने 2 अत्याधुनिक CNG संचालित बाढ़ नियंत्रण आपातकाल वाहनों की खरीद की है। महापौर ने बताया कि प्रत्येक वाहन में प्रति मिनट 10,000 लीटर पानी निकालने की क्षमता वाला पंप लगा है। इसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता सेवाओं को सुदृढ़ करना और जलभराव की स्थिति से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया पोस्ट देश में एक प्रमुख लॉजिस्टिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना है। संचार मंत्री ने आज नई दिल्ली में डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी करते समय ये बात कही।
श्री सिंधिया ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए 75 वर्ष पुराने इस प्रशिक्षण केंद्र की प्रशंसा की, जहां हजारों डाक कर्मचारियों को सेवा, दक्षता, सटीकता और राष्ट्र सर्वोपरि जैसे मूल्यों के साथ प्रशिक्षित किया गया है।
75 वर्षों की सेवा भाव, 75 वर्षों का इतिहास और आने वाले 75 वर्षों का भविष्य का निर्माण। PTC सहारनपुर ने जब देश की आजादी हुई थी, करीब उसी समय में इस संस्था की नींव रखी गई थी।
प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 प्रशिक्षु यहां प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम के दौरान गोवा सरकार और कोचिन बंदरगाह प्राधिकरण ने पेंशन लेखा और प्रबंधन प्रणाली में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये दूर संचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन पेंशन प्रबंधन प्रणाली है, जो पेंशन की प्रक्रिया, स्वीकृति और वितरण के लिए एक ही मंच प्रदान करती है। ये ऑनलाइन शिकायत निवारण, डिजिटल प्रोफाइल प्रबंधन और लेन देन रिकॉर्ड की सुविधा भी प्रदान करती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सके। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज डाबरी क्षेत्र से अवैध LPG सिलेंडर भंडारण और रीफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 17 सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने आज एक मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर को कश्मीरी गेट क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से एक कार और 405 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के केंद्रीय कार्यालय विद्या भारती भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में एक सफल मिसाल है, जिनमें पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधियां, भाषा और कौशल विकास शामिल हैं।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विद्या भारती के मूल्यों और कौशल विकास की पद्धतियों को अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10 दिन बिना बैग के स्कूल चलाने का प्रस्ताव है और ये प्रथा विद्या भारती की प्रणाली का आरंभ से ही अभिन्न अंग रही है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के तहत शिक्षकों के समग्र व्यक्तित्व विकास, नए विषयों को सीखने, नवीन शिक्षण विधियों को अपनाने और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए सतत प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। नव उद्घाटित कार्यालय के बारे में शिक्षा मंत्री ने विद्या भारती भवन में स्टूडियो की स्थापना सहित विभिन्न पहलों के बारे में जानकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जहां कई व्यवसायिक एडटेक प्लेटफॉर्म वर्तमान में सक्रिय हैं, वहीं विद्या भारती समाज के लिए निःशुल्क डिजिटल सामग्री भी तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विद्या भारती शिक्षा, मूल्यों, कौशल विकास, खेल, नृत्य और समग्र व्यक्तित्व विकास को कवर करने वाली विविध डिजिटल सामग्री विकसित करेगी। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के चिकित्सक कर्नल डॉक्टर किरण कुमार ने बताया कि रक्तदान जीवन रक्षक है, क्योंकि रक्त न तो खरीदा जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, बल्कि ये मनुष्य के शरीर में बनता है और जीवन बचाने के लिए दान किया जा सकता है।
लोगों की जान ब्लड डोनेशन से बचती है और ब्लड कहीं और बिकता भी नहीं है और बनता भी नहीं है। ब्लड जो है वो मनुष्य के अंदर बनता है और दूसरे मनुष्य को आप दे सकते हैं और एक जीवन दान है। तो इसका महत्व है कि हम किसी के जीवन दान के लिए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये चौथा ही कैंप है राष्ट्रपति भवन के अंदर हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद एम्स ब्लड सेंटर, और ये दूसरी बार है जो हम यहाँ पे 2025 और 2026 में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से बदलती आकांक्षाओं के लिए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है जो न केवल कुशल हो बल्कि नागरिक केंद्रित भी हो। उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए आज एक वीडियो संदेश में ये बात कही। वर्तमान शासन को नागरिक देवो भव के मंत्र से प्रेरित बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका स्पष्ट उद्देश्य लोक सेवा को अधिक सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है। क्षमता निर्माण आयोग अपने स्थापना दिवस और मिशन कर्मयोगी के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 8 अप्रैल तक कर्मयोगी साधना सप्ताह मना रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मैप माय इंडिया के साथ एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत अधिकृत आधार केंद्रों को मैपल्स ऐप पर प्रदर्शित किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि ये सुविधा आने वाले महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। इससे लोगों को अपने निकटतम अधिकृत आधार केंद्र का पता लगाने और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बताया कि एक बार ये सुविधा प्रारंभ होने पर मैपल्स ऐप पर उपयोगकर्ताओं की खोज उन्हें अधिकृत आधार केंद्रों तक ले जाएगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्माण और विध्वंस कचरे को हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता में सुधार और धूल प्रदूषण को कम कर जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इस अभियान के दौरान निगम के सभी जोनों में अतिरिक्त संसाधनों और मशीनरी की तैनाती की गई। प्रत्येक जोन में करीब 50 अतिरिक्त सफाई कर्मियों को लगाया गया। इस दौरान लगभग 1,52,000 मीट्रिक टन मलबा हटाया गया। इसमें से 79,000 मीट्रिक टन कचरा निगम ने जबकि शेष अन्य एजेंसियों ने उठाया। वहीं मलबे को रानीखेड़ा, शास्त्री पार्क, बुराड़ी और बक्करवाला स्थित संयंत्रों में प्रसंस्कृत किया गया। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली मलबा ऐप भी शुरू किया है, जिससे नागरिक मलबा हटाने के लिए अनुरोध और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग ने ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों के प्रति समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पद यात्रा का भी आयोजन किया। इस अवसर पर सफदरजंग अस्पताल की निदेशक डॉक्टर कविता शर्मा ने पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शीघ्र निदान, समय पर हस्तक्षेप और सामुदायिक जागरूकता के महत्व पर बल दिया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के अपर महानिदेशक मेजर जनरल आर प्रेमराज ने रेजिमेंट के सभी रैंकों की ओर से वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार दिल्ली समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार।
इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि हनुमान जी की अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अदम्य पराक्रम सभी को हर परिस्थिति में साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं राजधानी दिल्ली में श्रद्धालु सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हैं। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान हनुमान के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं में हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। इस अवसर पर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। साथ ही कई स्थानों पर भंडार भोज का भी आयोजन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि हनुमान जी की अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अदम्य पराक्रम सभी को हर परिस्थिति में साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रभु राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अद्वितीय पराक्रम सनातन जीवन मूल्यों का सर्वोच्च आदर्श है। दिल्ली में आज दिन भर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वन और वन्य जीव विभाग में वन्य जीव निरीक्षक के 9 पदों को स्वीकृति दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने टोडापुर स्थित पुलिस मुख्यालय में दिल्ली यातायात पुलिस के नए आपदा प्रबंधन वाहनों और महिला नेतृत्व वाली स्कूटर के बेड़े को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने भी बाढ़ नियंत्रण आपातकाल वाहनों के बेड़े को रवाना किया। दिल्ली पुलिस ने डाबी क्षेत्र से अवैध LPG सिलेंडर भंडारण और रीफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इंडिया पोस्ट देश में एक प्रमुख लॉजिस्टिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर और हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार दिल्ली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।